ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था, दो छः 1966 गुरुवार को चौथे पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी। जो आर्य समाजी और मुसलमान हैं दोनों कट्टर हैं, बिल्कुल कट्टर, और वो भी कट्टरपन मजहब ही पागलपन। ये आर्य समाजी भी मजहबी पागल, इनकी लड़ाई चलती है मुसलमानों से। मुसलमान माना यवन और आर्य समाजियों का तो अभी राज्य है। जो किसी धर्म विशेष को नहीं मानते, कहते हैं धर्म निरपेक्ष राज्य है। हमें किसी धर्म विशेष की आवश्यकता नहीं। इनको वोटों की आवश्यकता है। तो मुसलमानों से इनकी लड़ाई है बस। कोई मुसलमान बनेंगे तो ये आर्य समाजी कूदेंगे इनको हिंदू बनाने के लिए। दूसरा कोई भी नहीं, आर्य समाजी वो कदम उठाते हैं कि अरे इन मुसलमान को हम हिंदू बनावे। तो ये दोनों कट्टर बहुत हैं। अभी भी देखो तुम्हारे साथ जो देवताओं का नाम लेते हो ना, कट्टर है, इसलिए तुम्हारे साथ इनकी दुश्मनी है। ड्रामा के प्लान अनुसार कि मुसलमान तुम्हारे पुराने दुश्मन हैं, अब तुम बच्चों को तो कोई किस्म का दुख होता नहीं है। ये अपना कल पहले वाला पार्ट बजाए रहे हैं, ये तो कोई हर्जा नहीं है। और ये विघ्न तो पड़ेगा यज्ञ में। बाप ने आते ही कहा है बच्चे रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के असुरों के विघ्न पड़ेंगे, ये यज्ञ कुंड में कचरा फेंकेंगे। कचरा क्या है? ग्लानी का कचरा फेंकेंगे, आगे मनुष्य समझते हैं कि वो कोई असुर होता है, ऊपर से जा करके गोबर वगैरह फेंकते हैं। तो वो फेंकते होंगे यज्ञ कुंड में। ऐसे मनुष्य समझते हैं, परंतु नहीं, ये बिगन अभी तुम देख रहे हो कि कलप पहले मुआफिक है, जब बाप आते हैं, कब आते हैं है? अरे बाप कब आते हैं? अरे संगम युग में तो आते हैं बाप, लेकिन दो बाप हैं, एक आत्माओं का बाप, एक मनुष्य शक्ति का बाप, दोनों बेहद के बाप हैं। तो बोला कल पहले मुआफिक है, जब बाप आते हैं आ करके स्थापन करते हैं, तो कितना बलाओं के ऊपर विघ्न, नग्न होने का विघ्न। तो देखो दृष्टांत दिखलाया हुआ है, किसका? नग्न होने का दृष्टांत किसका दिखाया है शास्त्रों में? द्रौपदी का, बरोबर। तो अभी भी ये बाबलाओं के ऊपर अत्याचार होंगे, और फिर बरोबर पाप का घड़ा भरेंगे। ऐसे कहते तो रहते हैं ना, बरोबर। तो देखो पाप का बड़ा भर रहा है, एकदम अच्छी तरह से भर रहा है, क्योंकि नबलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे थोड़ा बहुत अत्याचार तो सहन करना होगा, उस अत्याचार के समय भी तुम बच्चे मुझे याद करो और अपने वर्षे को याद करो, भले कोई मारेंगे पीटेंगे उस समय भी, जब कोई मार खाते हैं तो बोलते हैं हे शिव बाबा बस, हे बाबा बोलो, कहते हैं ना, जब दुख होता है तो कहते हैं हाय राम। अभी तुमको तो ज्ञान मिला हुआ है, वो तो ऐसे ही कह देते हैं हाय राम। राम का नाम ले देते हैं, समझते तो है नहीं हाय राम। दुख होता है, कोई मारते हैं किसको, हाय खुदा, ओ गॉड, ऐसे कह देते हैं। किसको फांसी पर भी चढ़ाते हैं ना, तो पादरी लोग आते हैं उसको जा करके कहते हैं अब गॉड फादर को याद करो, ऐसे तो नहीं कहते क्राइस्ट को याद करो। تو پھانسی پر چڑھائے ہوئے کو بھی کہتے ہیں گاڈ فادر کو یاد کرو. تو سب کوئی اشارہ ان کا دیتے ہیں کن کا؟ دھرم پتا کا اشارہ دیتے ہیں یا باپوں کا باپ جو ہے اس کا اشارہ دیتے ہیں؟ اشارہ دیتے ہیں آتماؤں کے باپ کا. وہ اتنا تو موسٹ لولی ہے جو سب ان کو ہی پکارتے رہتے ہیں. اور پکارتے کون ہیں یہ بھی تم بچے بہت دکھی ہوتے ہو. تو آتما ہی پکارتی ہے. یہ جو بھی کچھ ہے سب آتما ہی کرتی. دیکھو بیرسٹر بنتی ہے آتما, جج بنتی ہے آتما. تو یہ بیرسٹر ابھی آتما بنتی ہے نا. آتما کہتی ہے کہ میں یہ شریر لے کر کے یہ پارٹ بجائے رہی ہوں, پرنتو اگیان کال میں یہ کچھ پتا نہیں رہتا ہے کیونکہ وہاں کوئی آتما ابھیمانی تو ہے ہی نہیں, دیہ ابھیمانی ہے. ابھی آدھا کلپ دیہ ابھیمان جو ہوا ہے وہ ایک جنم میں, یہ انتم جنم میں دیہ ابھیمان نکل کر کے دیہی ابھیمانی بنے. اس میں بہت محنت لگتی ہے, سمجھا؟ کتنے جنم لیے ہیں؟ 63 جنم دیہ ابھیمان میں ہی رہے ہو. ابھی 63 جنم کی جو عادت ہے دیہ ابھیمان کی, وہ ایک جنم میں مٹانی ہے. کیوں؟ ہم کو مٹانی ضرور ہے کوشش کر کے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی دیہ ہی ابھیمانی بننے سے ہم سورج کے مالک بن جائیں گے. دیکھو دیہی ابھیمانی بننے سے کتنی پراپتی ہے. تو کوشش بہت چاہیے نا, اس لیے رات دن کوشش. جیسے منشی دن رات دھندے کی کمائی کرنے کے لیے محنت تو کرتی رہتی ہے نا. اگر منشی دن میں کمائی کرنے والے ہوں, دکان چلتا رہتا ہے, بھلے جواہرات کا ہو کوئی کا بھی دھندا ہو, آمدنی ہوتی رہتی ہے نا. 2666 کی وانی کا 5 پیج, آمدنی میں کبھی بھی منشی کو پنکی نہیں آئے گی. آمدنی میں کبھی منشی کو باسی نہیں آئے گی. کی بات یاد رکھ دینا, بھلے وہ کتنا بھی تھک جائے تو آمدنی ہوتی ہے, بھلے رات کو بھی پیسہ ملتا جائے, چیز بیچتے ہی جائیں گے, نیند نہیں آئے گی, وہ باسی نہیں آئے گی, تھکان نہیں ہوگا, کیونکہ پیسہ ملتا رہتا ہے نا. تو خوشی ہوتی رہتی ہے, پیسہ ملنے کی خوشی رہتی ہے نا. اس میں تھکنے کی کیا بات ہے؟ دیکھو बाबा अनुभवी तो है ना, बाबा ने अनुभवी रख लिया है ना, तुम्हारी कौन सी कमाई है? अविनाशी कमाई तो है, दुनिया वालों की विनाशी कमाई है, लेकिन जो अविनाशी कमाई है वो है असल में बाबा की याद में रहते हुए सेवा करना। जितना जितना दूसरों की सेवा करेंगे उतना उतना तुम्हारा ऊंच पद बनता जाएगा, कमाई होती जाएगी। जो सेवादारी बच्चे होते हैं उनको बाप याद करता है, जिन बच्चों को बाप याद करता है उनकी याद पक्की होगी ना। याद में सेवा करने से कमाई बहुत होगी, मनन चिंतन मंथन चलेगा और नए नए ज्ञान रत्नों की पैदाइश होगी। तो बाबा ने बोला कि बाबा ने अनुभवी रख लिया है, कौन सा एक अनुभवी होता है लौकिक कमाई का, लौकिक जवाहरात के धंधों का, और दूसरा होता है अलौकिक ज्ञान रत्नों का अनुभवी। रत्नों का भंडार बढ़ता जाता है, कभी कभी तो रात में नींद भी नहीं आती। बाबा रात को जागे हैं, आगे रात को स्टीमर आते थे, वो तो रात को दुकान खोलते थे और स्टीमर के सोल्जर वगैरह ये सब आते थे, आकर के मार लेते थे और करोड़ रुपए की कमाई, डेढ़ लो दो लो ठोकते जाओ, तब तक उनका खीसा पाकिट खाली न करें, तब तक उनको छोड़ ही नहीं, तो ये देखो ये व्यापारी का अनुभव हुआ। सारा व्यापार किया हुआ है, ऐसे नहीं कि कुछ नहीं, बाबा ने चुन करके ड्रामा के अनुसार ऐसा कोई लिया है रथ, और गांवड़े का छोरा भी तो इनको ही कहेंगे। तो ये छोरा भी तो था ना, बाबा ने बोला ना, दस आने मन बाजरी बेचते थे, ग्यारह आने मन ज्वार बेचते थे, मुझे तो याद है एकदम पक्की, सात आठ दिन दुकान खोलते थे। क्यों? केनाल से खोदते थे तो जो मजदूर जाते थे, आकर के छुट्टी मिलती थी, गांव में आए थे और आते थे ये अन्न लेने के लिए। हम खुद छोटा कोई आठ वर्ष का होगा उस समय, तो गांवरे का छोरा था ना, पर ये तो गांवरे का छोरा नहीं है ना। इसकी तरफ इशारा किया नहीं, ये तो गांवरे का छोरा नहीं है ना, ये तो विश्व का मालिक है ना। इसकी तरफ इशारा किया, लक्ष्मी नारायण के चित्र की ओर इशारा किया। परंतु ये तुम जानते हो कि अभी पूरा ही पूरा ये सो बनते हैं, सो गांवरे का छोरा बना था ना। देखो पूरा एकदम बाबा बता रहे हैं, टोपी भी पूरी नहीं थी, जूती भी नहीं थी, तो अभी अनुभव सब है। कहां बाजरी चारा न कमाना, कहां ये चढ़ते 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 सब व्यापार करते, ये पीतल रेशम फलाना, ऐसा कोई व्यापार नहीं है शायद जो मेरे हाथ से नहीं निकला होगा। तहां तक कि चढ़ते चढ़ते वो जवाहरातों का धंधा, अभी उन जवाहर के बाद फिर ये सच्चे जवाहर, व्यापार भी सबसे अच्छा गिना जाता है ना जवाहरात का। ये रायल व्यापार है एकदम, नहीं तो लोहे की दुकान वाले भी होते हैं, पीतल के बर्तन भी बेचते हैं, तांबे के बर्तन बेचते हैं, सोने चांदी के भी, जवाहरात का धंधा सबसे ऊंचा, बेहद में जवाहरात क्या हुआ, सोना क्या हुआ, चांदी क्या हुआ, पीतल तांबा लोहा क्या हुआ, है सोना जल्दी मोल्ड होता है या लोहा जल्दी मोल्ड होता है? मोल्ड होना माने क्या? बेहद में है? है फट से अपने आसुरी संस्कारों को छोड़ देना और दैवी संस्कारों को धारण कर लेना। तो कहते हैं फट से चेंज हो जाना। और हीरों का भी धंधा होता है, एकदम रायल व्यापार। सो भी वो व्यापार करते थे राजाओं से, महाराजाओं से, एकदम ये जितना अनुभवी है गांवड़े से, ये दुकान चलाना, ये राजाओं से बात करना, किसकी बात है? ब्रह्मा बाबा की बात। हद के राजाएं भी होते हैं और फिर बेहद के राजाएं भी हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। तो बेहद के राजाओं से बातचीत करना, किंग से बात करना, ये जर्मन के प्रिंस कौन सी माला की बात है? रुद्रमाला के राजाओं की बात है। कोई किस धर्म के छिलके वाले, कोई किस धर्म के छिलके वाले। छिलका कौन सा है? देहबान का छिलका है। तो ये जो जर्मन के प्रिंस आते थे, ये वायसराय वगैरह, तो वायसरायों के घर में बाबा ऐसे ऐसे जाते थे, ऐसे जाते थे जैसे उनका बच्चा है। रुद्रमाला में जो जर्मन का प्रिंस बनने वाला होगा, उसे बाबा कैसे बात करते होंगे? बाप समझकर बात करेंगे या बच्चा समझकर बात करेंगे? क्यों है? बाबा साधारण तनधारी या असाधारण है? साधारण। तो बच्चा समझ के कैसे बात करेंगे है? अरे ज्ञान रतन बाबा के पास ज्यादा होंगे या जर्मन का जो प्रिंस होगा उसके पास ज्यादा होंगे? कोई कमांडर इन चीफ पूछते थे, तुम क्या समझते हो? परमठ के बगैर कोई इनके पास जा नहीं सकता। तो नहीं, हम तो परमिट ले लेते थे, हम जाकर उनके बीच में खूब घूमते, खूब चक्कर लगाते। तो देखो रथ भी तो बोलते हैं ना कि ये कितना अनुभवी रथ है सब बातों का। किससे मिलने जुलने की बात बताई, कमांडर से मिलने की बात बताई, कमांडर इन चीफ से मिलने की बात बताई, जर्मन के प्रिंस की बात बताई। तो दोनों तरफ लागू होता है, ये एक ही तरफ लागू होता है, हद में और बेहद में भी सब बातों का अनुभवी है। पिछाड़ी में जवाहरात, अभी फिर सच्ची जवाहरात, इसको कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रतन। किसको है अविनाशी ज्ञान रतन, किसको कहा जाता है? कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, यहाँ कहते हैं मुरली निकली। मुरली के लिए बाबा कहते हैं अभी ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? सिर्फ अमृत कहेंगे या ज्ञानामृत कहेंगे? हैं? ज्ञानामृत कहेंगे, अमृत। अमृत मंथन करके निकाला जाता है, तो अभी ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। मना भक्ति मार्ग में जो वेद निकले उनको अमृत कहेंगे या उनका बाद में मंथन हुआ? जो वेद वाणी निकली उसका बाद में मंथन होता है भक्ति मार्ग में, तो ब्राह्मण निकले, आरण्यक निकले, ये व्याख्याएं निकली। पुराण निकले, उपनिषद निकले, तो इन व्याख्याओं को अमृत कहेंगे या वेदों को अमृत कहेंगे? मंथन करके कौन निकले है? वेद मंथन करके निकले? नहीं निकले, वेदों का बाद में मंथन हुआ भक्ति मार्ग में, ऐसे ही ज्ञान मार्ग में। मुरलियों को मंथन कहेंगे, अमृत कहेंगे है? जिस अमृत को पीकर अमर हो जाते हैं। अमर होना माने है पक्का निश्चय, निश्चय बुद्धि हो जाना, कभी भी कोई भी अनिश्चय नहीं ला सके, उसको कहेंगे संगम युग में अमर पद पाई लिया। तो इसको कहेंगे अविनाशी ज्ञान रतन। वेद विनाशी हो गए या अविनाशी हैं? है? अरे भक्ति मार्ग में भी वेद विनाशी हैं या अविनाशी हैं? है? अविनाशी हैं? लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, है? दूसरों को समझाते हैं वेदों का अर्थ, नहीं? तो विनाशी हुए या अविनाशी हुए? विनाशी हो गए। और उनकी जो व्याख्याएं निकली वो आज भी अविनाशी है भक्ति मार्ग में, लोग पढ़ते हैं। यहाँ तक कि जब बाप आते हैं तो जो गीता है उसे क्या कहेंगे? भक्ति मार्ग में तो कहते हैं महाभारत से गीता निकली, महाभारत का एक अंश है गीता। लेकिन वास्तव में गीता वेदों से भी पुरानी है या आधुनिक है? वेदों से भी पहले। तो यज्ञ के आदि में जो गीता का ज्ञान सुनाया जाता था, गीता के अर्थ बैठ करते थे, वो ही अविनाशी ज्ञान है जो आदि में सो ही अंत में प्रत्यक्ष होता है। तो ये अविनाशी ज्ञान रतन है और ये है एक एक रतन जो तुम धारण करती हो, धारण करके तुम पदमपति बनती हो। तो जो जड़ रतन है जिसको ये लोग कहते हैं कि तुम धारण करते हो, जड़ रतन धारण करते हो तो पतित बनते हो, ये कमबख्त बनते हो। क्या कहा है? ज्ञान में कमबख्त कौन हुए और बक्तावर कौन हुए? वक्त माने समय, जो संगम युग का अमूल्य समय है, उस अमूल्य समय को अच्छे से प्रयोग में लाया। तो कौन सी माला वाले हैं? रुद्र माला वाले। तुम बक्तावर हुए और वो जड़ रतनों का व्यापार करने वाले, उनको धारण करने वाले क्या हुए और क्या बनने वाले हैं? है? कंबक। कैसे? बेहद में कैसे? हाँ, पहले ही शरीर छोड़ दिया। तो ब्राह्मणों की दुनिया में पहले ही शरीर छोड़ देते हैं, जो संगम युग की अविनाशी प्राप्ति है, जो निराकार बाप से मिलती है, वो प्राप्त नहीं कर पाते। शरीर छोड़ दिया तो वो रतन धारण करने के लिए कम वक्त मिला या ज्यादा वक्त मिला? है? कम वक्त मिला। तो बताओ ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते दुर्गति को पाए है ना। अर्थ तो समझा ही नहीं, कौन से शास्त्र पढ़ते पढ़ते दुर्गति को पाए है?
मनुष्य ने बनाया हुआ शास्त्र।
कौन से शास्त्र? ब्राह्मण की दुनिया में कौन से शास्त्र हैं जिनको पढ़ते पढ़ते दुर्गति को पाते जाते हैं? समझते कुछ भी नहीं है, है? है? तो वो जड़ रतन है जिनको ये लोग कहते हैं तुम धारण करते हो, पतित बनते हो, ये कंबख्त बनते हो। देखो इनको रतन कहेंगे, उनको जवाहर कहेंगे, तो बाबा भी कहते हैं देखो बाप बैठ करके तुम बच्चों को कितना गहरी बात बताते हैं। ये है शिव बाबा, उसको कहा ही जाता है रत्नागर जादूगर, और उनसे कोई विरला व्यापारी सौदा करे किनसे? उनसे, उनसे कह करके दूर क्यों कर दिया? कौन से सन की मुरली है? है 66 की मुरली है, तो उनसे कह करके दूर क्यों कर दिया? बाजू में ही तो बैठा हुआ है, है? अरे भविष्य के लिए बोला, उनसे माने, उनसे माने दूर की बात बताई, उनसे कोई बिरला व्यापारी सौदा करे, सौदागर। देखो बाप की महिमा है, और ऐसे को कह देना सर्वव्यापी है, ये क्या बात है? देखो इतनी महिमा, सौदागर, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, रत्नों का सागर, जादूगर वगैरह वगैरह, कितनी महिमा करते हैं। और फिर कह देते हैं सर्वव्यापी, वो पतित पावन है, दुख हरता है, सुख करता है, अरे इतनी महिमा, और सर्वव्यापी कह देते, सारा खेल एकदम खलास। इतनी महिमा और फिर इतनी ग्लानी है, किसकी इतनी ग्लानी? कौन से सन की वाणी है? 66 की है, तो इतनी महिमा और इतनी ग्लानी कब की बात? 66 की बात है या भविष्य के लिए इशारा किया? भविष्य के लिए इशारा किया। वैसे भी मुरली में कहते हैं ब्रह्मा की इतनी ग्लानी होती है, परंतु ब्रह्मा से भी जास्ती ग्लानी किसकी होती है? किसकी होती है? हैं? अरे बाप की। तो बाप कौन? बिंदी। बिंदी की महिमा और बिंदी की ग्लानी की बात होती है, हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इतनी महिमा और इतनी ग्लानी کہتے ہیں باس کتے میں ہے، بلی میں ہے، ٹھکر میں ہے، بستر میں ہے. کہتے ہیں نا دیکھو یہ منشیوں کی کتنی غلطی ہو گئی ہے، گلانی ہو گئی ہے بھکتی مارگ میں. باپ تو کہتے ہیں نا بچے بھکتی جب پوری ہوتی ہے تب بھگوان آتے ہیں. کب آتے ہیں؟ بھکتی کب پوری ہوئی؟ ارے کب کہیں، 36 میں پوری ہوئی، 47 میں بھکتی پوری ہوئی، 76 میں پوری ہوئی. یہ ابھی تک پوری ہوئی کہ بڑھتی جا رہی ہے؟ بھکتی بڑھتی جا رہی ہے یا پوری ہوئی؟ بڑھتی جا رہی. تو کب کہیں بھکتی پوری ہوتی ہے اور بھگوان آتے ہیں؟ تتھاکتھت برہما کماریوں سے پوچھو، کہیں سن 36 میں آتے ہیں. تو 36 میں بھکتی پوری ہو گئی کہ اور ہی بڑھتی گئی؟ نہ 36 میں، نہ 47 میں، نہ 76 میں. تو کب کہیں بھگوان آتے ہیں؟ تو بھگوان آنے پر بھکتی مارگ مردہ باد ہوگا یا زندہ باد ہوگا؟ مردہ باد ہوگا. اور گیان مارگ سنسار میں زندہ باد ہونے لگے گا. مانا گیان کا مہتو بڑھنے لگے گا اور بھکتی کا مہتو گھٹنے لگے گا. بھکتوں کا رکشک آ کر کے بھکتوں کی رکشا کرتے ہیں. سو تو تم کرتے ہو سب سے بڑی بھکتی. اور بہت بھکتی کون کرتے ہیں؟ کیسے ثابت ہو کہ انہوں نے بہت بھکتی کی ہے؟ اس کا کیا رزلٹ ہوتا ہے سنگم میں؟ ارے ہاں جنہوں نے بہت بھکتی کی ہوگی وہ بہت گیان بھی اٹھا دیں گے. جنہوں نے ستو پردھان بھکتی کی ہوگی وہ ستو پردھان گیان اٹھا دیں گے. جنہوں نے تمو پردھان بھکتی کی ہوگی وہ تمو پردھان گیان اٹھا دیں گے. جنہوں نے انیکوں کی بھکتی کی ہوگی جنم جنمانتر وہ انیکوں سے گیان لیں گے یا ایک سے گیان لیں گے؟ انیکوں سے گیان لیں گے. گیان بھی بچاری لیتے ہیں تو سدھ ہو جاتا ہے. کہ سب سے بڑی بھکتی تم کرتے ہو اور بھکتی تو سبھی کرتے ہیں نا. ڈھیر کے ڈھیر ہیں، اتھا ہیں جو بھکتی کرتے ہیں. سب سے جاستی بھکتی کون کرتے ہیں؟ 2.6.66 کی وانی کا چھٹا پیج. جب بھکتی مارگ شروع ہوتا ہے شیو کی پوجا بھی تم کرتے ہو. جو پہلے پہلے شیو کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں शिव तो है शुरुआत, काहे की भक्ति की शुरुआत है। देवताएं सो जब वाम मार्ग में जाते हैं वो ही यहाँ आकर के कहते पहले पहले ब्राह्मण बनते हैं और अपना वर्षा बाप से लेते हैं। आगे पूजा करते थे, अभी बाप से पूज्य बनने के लिए वर्षा ले रहे। तो रावण ने पुजारी बना दिया, अभी बाप फिर आकर के पूज्य बनाए रहे। देखो अभी चक्कर को तो अच्छी तरह से समझ गए ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझ गए। अभी ये ज्ञान दूसरा तो कोई दे ही न सके, तो ये ज्ञान है ही भगवान वाद, और भगवान है एक, दो तीन तो भगवान होते ही नहीं। श्रीमत भगवान वाच, श्रीमत भगवत गीता, भगवान वाच अभी होना चाहिए, शिव भगवान वाच, और ठोंक दिया है कृष्ण भगवान वाच गीता को। किसने ठोंक दिया है? शूटिंग किसने की है? अरे कोई ने तो ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग की होगी कृष्ण भगवान वाच की, तो किसने शूटिंग की? और अभी तक भी कौन शूटिंग कर रहे हैं? वो तथाकथित ब्राह्मण है जो अपन को ब्रह्मा की औलाद समझते हैं, कुखवंशावली औलाद, मुखवंशावली तो ऐसे कह नहीं सकते कि गीता का भगवान कृष्ण उर्फ साकार में ब्रह्मा बाबा है। तो देखो कितना फर्क हो गया, बाप जो उनकी भी सदगति कर रहे हैं, किनकी है? हाँ, बाप जो उनकी भी सदगति कर रहे हैं जिन्होंने कृष्ण भगवान वाच ठोक दिया, जो कृष्ण 84 जन्म भोग करके दुर्गति को पाया है। कितने जन्म भोग करके कपूरे हुए हैं कृष्ण के? 84 जन्म कपूरे कहे हैं? अरे घड़ी घड़ी अटक जाते हैं। 69 में 1969 में कहे 18 जनवरी को कि कृष्ण की आत्मा के 84 जन्म पूरे हुए और 84 जन्म भोग करके फिर दुर्गति को पाया है। कौन सी दुर्गति है? कौन सी दुर्गति को पाया है? शरीर तो छूट गया, जिससे पुरुषार्थ करते थे, कमाई करते थे, वो शरीर तो छूट गया, फिर कौन सा शरीर पाया है? है सूक्ष्म शरीर मिला, उससे पुरुषार्थ हो सकता है? है पुरुषार्थ तो नहीं हो सकता। तो जिस शरीर से पुरुषार्थ नहीं हो सकता वो शरीर दुर्गति वाला कहे या सदगति वाला कहे? दुर्गति को पाया। कैसे कहे दुर्गति को पाया साबित करो।
हार्ट अटैक हो गया ना।
हाँ, बाबा ने तो बोला है जो योगी होते हैं उनका हार्ट फेल नहीं हो सकता। जो पक्के योगी निकलेंगे भगवान बाप को पहचान करके बाप के साथ योग लगाने वाले, साकार में आए हुए बाप को निराकार रूप में याद करने वाले, वो भोगी नहीं हो सकेंगे। अंत में पक्के योगी हो जाएंगे। उनकी पहचान ये है कि वो शरीर को और आत्मा को दोनों को यहाँ ही पावन बना देंगे या ऊपर जाकर के पावन बनेंगे? यहाँ ही पावन बना देंगे। ऐसी जो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं, सूर्यवंशी बच्चे, वो कोई भी जन्म में भूत प्रेत की योनि धारण नहीं करेंगे। बाकी चाहे चंद्रवंशी हो, चाहे इस्लाम वंशी हो, बौद्धि वंशी हो, क्रिश्चियन वंशी हो, सब कोई न कोई जन्मों में भूत प्रेत बनते रहेंगे या नहीं बनेंगे? भूत प्रेत बनते रहेंगे। तो दुर्गति हुई या सदगति हुई? ये तो दुर्गति हुई। तो देखो 84 जन्म भोग करके दुर्गति को पाया है, भिन्न भिन्न नाम रूप धारण किए है। उनको फिर सदगति को कह रहे हैं, नाम ठोंक दिया है उनका किनका? कृष्ण का। देखो कितना गीता माता को खंडन किया है। अभी ये तो कोई बात जानते ही नहीं है। ये तो ड्रामा के प्लान अनुसार फिर भी ऐसा ही होगा, फिर भी ये गीता का नाम बदल ही जाएंगे। भक्ति मार्ग है ये दुर्गति मार्ग। कोई भगत को कहो ये भक्ति दुर्गति है तो एकदम लड़ पड़ते हैं। भक्ति मार्ग में लड़ पड़ते हैं कि नहीं? भक्ति मार्ग वाले ही लड़ पड़ते हैं कि ज्ञान मार्ग में भी ऐसी शूटिंग करने वाले ब्राह्मण हैं?
ज्ञान मार्ग में भी है
जो एकदम लड़ पड़ते हैं कि तुम कृष्ण को दुर्गति वाला कहते हो, कृष्ण की आत्मा भक्ति मार्ग में है। एकदम लड़ पड़ेंगे। कहते हैं ये तो कोई नास्तिक है, ओम शांति।